السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة التحريم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سورۃ تحریم مدنی سورت ہے، دو رکوع ہیں اور 12 آیات ہیں، اور مدینہ میں بھی اس دور کی ہے کہ جب خیبر کا علاقہ فتح ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی کچھ حالت بہتر ہو گئی تھی. یہاں پر تقریباً تمام ہی مفسرین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے جو اس آیت کے پس منظر میں ہمیں ملتا ہے. بخاری کی اور بعض دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج سے تھوڑی تھوڑی دیر ملنے کے لیے جاتے تھے. تو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے پاس کہیں سے کوئی شہد آیا، کس نے ان کو بطور تحفتاً وہ شہد بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، لہٰذا روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے گھر زیادہ دیر تک رکنے لگے. تو یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہ کو تھوڑی سی کھٹکنے لگی. انہوں نے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ وہاں پر شہد آیا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کی کافی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی اور دوستی بھی تھی، تو دونوں نے آپس میں طے کیا اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے جس کی بنا پر اللہ کی رسول زیادہ دیر تک وہاں بیٹھ نہ سکے. اور یہ ایک فطری چیز ہے، آپ دیکھیں ازواج مطہرات بھی دراصل انسان ہی تھیں، یہ بات ہم پہلے سورہ احزاب میں بھی پڑھ چکے ہیں. اور خواتین جو کہ اگر ایک ہسبینڈ کے نکاح میں ہوں، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کی توجہ اس کی طرف زیادہ رہے. تو اسی بنا پر، ایک انسانی فطرت کی بنا پر، عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا اور آپس میں طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول آپ کے پاس آئیں اور میرے بھی پاس آئیں، تو میں ان سے کہوں گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. مغافیر ایک قسم کا فلاور ہوتا ہے، جس سے مکھی اگر شہد بناتی ہے، لیتی ہے، تو اس میں ایک ہلکی سی بسان سی سمیل ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نفاست پسند تھے، آپ کو اس طرح کی سمیل پسند نہیں تھی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن واپس آئے، یعنی زینب بنت جحش کے گھر سے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں نے آپ سے یہی کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قسم کھائی کہ اب میں کبھی آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو حلال کی ہے، اگر اللہ کے رسول وہ چیز حرام کر لیتے ہیں، تو جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، امتی، تو ان کو بھی چونکہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو لہٰذا وہ بھی ایک حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے. لہٰذا یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر تنبیہ کی اور یہ سورت نازل فرمائی، جس میں پہلی ہی آیت ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ایون اللہ کے رسول بھی کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کے حلال کرتا ہے، وہ حرام نہیں کر سکتے، اور جو حرام ہے وہ حلال نہیں کر سکتے. آپ بتائیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں ہے، تو باقی عام لوگوں کو کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. کسی نبی، हत्ता कि अल्लाह के रसूल को भी इख्तियार न था कि आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ हलाल को हराम कर लें, क्योंकि आप एक रसूल थे और आपकी इत्तेबा करना सब पर लाजिम है। तो हो सकता था आगे चलकर फिर ये बात होती कि अच्छा, जब अल्लाह के रसूल शायद नहीं इस्तेमाल करते हैं तो हम भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वैसे भी आप देखें कि आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी हमें टूटी फूटी से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल की पसंद नापसंद को हम कितना अहम करार देते हैं कि जो अल्लाह के रसूल को पसंद था हम कोशिश करते हैं कि हम भी वही चीज़ें इस्तेमाल करें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद था हम कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों से बचते रहें। तो जब अल्लाह के रसूल अपने ऊपर कोई एक चीज़ हराम करार दे लेते, ममनू करार दे लेते अपने लिए, तो जाहिर सी बात है उम्मत भी उसको इस्तेमाल ना करती थी। लिहाजा इसी बिना पर अल्लाह ताला ने फौरन यहाँ पर तन्बीह फरमाई और कहा कि ए नबी, क्यों आप एक चीज़ को हलाल हराम करते हैं जो अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल की है, और क्या आप अपनी बीवियों की खुशी चाहते हैं? और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहीम है। एक और बात यहाँ पर पता चलती है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर तन्बीह फरमाई कि क्या आप अपनी बीवियों की मर्ज़ी चाहते हैं। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही थे, और कभी भी कहीं आपसे कोई खिलाफ उला बात हुई, यानी नेकी के इंतहाई जो आला दर्जे होते हैं उससे हटकर अगर आपसे कोई बात ऐसी हो गई तो अल्लाह ताला ने फौरन तन्बीह फरमा दी। और यही दरअसल अम्बिया अलैहिस्सलाम को जो मासूम कहने की बात की जाती है कि अम्बिया मासूम अनिल खता होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे अगर कुछ इस तरह से कोई खिलाफ उला बात होती भी है तो अल्लाह सुबहाना तआला फौरन उनकी इस्लाह फरमा देता है, उनको उसी वक्त तनबीह कर दी जाती है कि जो आपने काम किया सही नहीं है, लिहाजा वो अपने आप को उसी वक्त जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है उसके मुताबिक कर लेते हैं। तो इससे पता चलता है, जैसे इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दुआ की थी या आपने अब्दुल्लाह बिन उबई की नमाज़ पढ़ाई थी और आपने अपनी वालदा के लिए दुआ की थी और आपने कहा था कि जब तक कि अल्लाह ताला मुझे मना नहीं फरमा देते या हुक्म नहीं आ जाते तब तक मैं दुआ करता रहूँगा, तो इससे पता चलता है कि अम्बिया से अगर ऐसा कोई काम हो जाता है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है तो अल्लाह ताला फौरन उस पर तन्बीह फरमा देता है ताकि सबके लिए अम्बिया रोल मॉडल्स हों। क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लता अयमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। अल्लाह ने तुम्हारे लिए नाजायज़ कस्म को खोल देना वाजिब करार दिया है, अल्लाह ही तुम्हारा सरपरस्त है और वह सब कुछ जानने वाला हिकमत वाला है। अब यहाँ पर कसम के कफ़ारे की बात की गई है कि जो ऐसी कसम इंसान खा ले जो कि पसंदीदा नहीं है या जायज़ नहीं है तो उसका कफ़ारा है। तो जो भी ऐसी कस्में खाई जाएंगी उसका कफ़ारा अदा करके उस कसम से आज़ाद हो जाया जाएगा। وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ। जब नबी ने अपनी किसी बीवी से एक राज की बात कही उस बीवी ने वो बात आगे बता दी और ये मामला अल्लाह ताला ने नबी पर जाहिर कर दिया। अब नबी ने उस बीवी को कुछ बात तो जतला दी और कुछ ना जतलाई। फिर जब नबी ने उसे अफशाए राज की बात बताई तो वो पूछने लगी कि आपको इसकी किसने खबर दी? तो नबी ने कहा, मुझे उसने खबर दी है जो हर बात को जानता और उससे पूरी तरह बाखबर है। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये कुछ राज की बात थी और जो कि अल्लाह के रसूल ने हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा से कही थी या आयशा रदी अल्लाह अन्हा से कही थी। तो हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा ने आयशा रदी अल्लाह अन्हा को बात बता दी या आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा को बात बता दी। बहरहाल बात क्या थी इसकी कहीं हमें कोई ख़बर नहीं मिलती, कोई सही ऑथेंटिक रिवायत से पता नहीं चलता कि क्या बात थी। और वैसे भी आप देखें कि हमें उस बात के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए कि वो कौन सी बात थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताई नहीं वो बात, इसका मतलब है अल्लाह ताला भी उसे राज रखना चाहता है। असल बात सीखने की जो है वो क्या है कि किसी भी स्टेट के जो हेड होते हैं या गवर्नर समझ लें या प्रेसिडेंट समझ लें, चूँकि एक बहुत बड़ा अहम और आला ओहदा होता है, तो जो भी हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं उनके पास बहुत सारे अहम राज होते हैं। तो अब बीवियों को चाहिए कि वो ऐसे राजों की हिफाजत करें। तो यहाँ पर चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ एक उस वक्त के जो रहनुमा थे, जो लीडर थे और नबी थे, तो उनकी बीवियाँ थीं। अब अगर कोई राज की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीवी को बताते हैं तो बीवी की ये जिम्मेदारी थी कि वो इस राज की बात को किसी पर अफशा ना करती, लेकिन उनसे ये गलती हो गई। और जैसे कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि अजवाज मुतहरात भी इंसान ही थीं, गलती किसी से भी हो सकती है, आप देखें। और यहाँ पर जब अल्लाह सुबहाना तआला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया और अल्लाह सुबहाना तआला ने उस पर उनको ऐसी कोई, हम देखते हैं कि बज़ाहिर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती कि उनको कोई सज़ा दी गई हो, बस उनको यहाँ पर वॉर्न किया गया कि वो ऐसा ना करें या अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ कोई एक ग्रुप न बना लें। क्योंकि अब अज़वाज मुतहरात थी, एक तरफ कहा जाता है कि हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा, सौदा रदी अल्लाह अन्हा और आयशा रदी अल्लाह अन्हा, ये लोग एक तरफ थी, और उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा, ज़ैनब बिनते जहश और सफ़िया बिनते हुई, ये एक अलग थीं। हो जाता है इंसान से, अब बीवियाँ ही थीं, ख़वातीन ही थीं, जाहिर सी बात है, और सबको अल्लाह के रसूल की दरअसल तवज्जो चाहिए था, ज़्यादा उनसे क़ुर्बत चाहिए था। तो बहरहाल जब वो राज की बात बता दी और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीवी से कहा कि तुमने वो राज की बात क्यों बताई जबकि तुम्हें राज रखने के लिए कहा गया था, तो वो जो भी थी बीवी, हो सकता है आयशा रदी अल्लाह अन्हा हो सकता है हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा हो, क्योंकि किसी रिवायत से सही नाम हमें नहीं पता चलता है, और अल्लाह तआला ने वो बात भी नहीं बताई। बहुत सारे मुफस्सरीन ने इसके बारे में बहुत अलग अलग बातें लिखी हैं और थोड़े से सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं जो कि मुनासिब नहीं लगते इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल करना। आप देखिए, वो जो लोग थे गुजर चुके और उनके जो मामलात थे, ये सारे मामलात जब अल्लाह ताला ने नहीं बताए हैं तो हमें भी खोज और कुरेद करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए लंबी लंबी तफासिर की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा वो ये वाक़या हुआ था, वो वाक़या था, या ऐसी बात थी वैसी बात थी और अल्लाह के रसूल ने फिर ये किया था। नहीं, हमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसके बारे में हमें ज़्यादा छानबीन की ज़रूरत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मुझे उस अलीम व ख़बीर हस्ती ने ख़बर दी है जो कि रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सुबहान तआला ने ख़बर दी। तो इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही खफ़ी भी आती थी। और कुरान की ऐसी कई आयात हैं जिससे ये सबूत हमें मिलता है कि कुरान के अलावा भी आप पर वही नाजिल होती थी, जिसको वही गैर मतलू या हदीस हम कहते हैं, वही खफ़ी भी कहा जाता है जिसे। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर मिल गई और अल्लाह ताला ने ख़बर दी कि फ़लां बीवी ने फ़लां आपका राज अफशा कर दिया है, तो आपने फिर उनसे जाकर पूछा और उनको वार्न किया। इन ततुबा इलल्लाहि फ़क़द सुगत कुलूबुकुमा व इन तज़ाहर अलैहि फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर। अगर तुम दोनों बीवियाँ अल्लाह के हुजूर तौबा करती हो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल राह रास्त से हट गए हैं, और अगर तुम इस मामले में नबी के ख़िलाफ़ एक दूसरे की पुश्त पनाही करोगी तो अल्लाह, जिब्रील और सालेह मोमिन सब नबी के मददगार हैं और उनके अलावा फरिश्ते भी उसके मददगार हैं। यहाँ पर ये ना समझे कि राह रास्त से हट चुकी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नौज़बिल्ला उनसे कोई ऐसे गुनाह के बड़े बड़े काम सरज़द हो गए थे, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम नबी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने के लिए जो तुमने एका कर लिया है, या तुम नबी पर ज़बरदस्ती करवा रही हो, या जैसे कि तुम्हारे इस काम की बिना पर नबी ने अपने ऊपर शहद हराम कर लिया, तो ये सब दुरुस्त नहीं है। इसी बिना पर कहा गया कि तुम तौबा कर लो, इस्लाह कर लो। और आप देखिए कि यही सही तरीक़ेकार है कि अगर किसी से गलती हो जाती है तो तौबा का दरवाज़ा उसके लिए खुला है। जब अल्लाह सुबहाना तआला माफ़ करना चाहता है और अल्लाह सुबहाना तआला माफ़ फरमा देता है, तो इंसान भला क्या किस बलबूते पर कह रहे कि जाओ मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा या मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तो ये चीज़ गलत है। हमारे माशरे में ये चीज़ आम हो गई है कि अगर किसी से कोई गलती हो गई थी 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो हम उसको माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं होते, उसकी उस गलती का इतना ढिंढोरा हम पीटेंगे कि बेचारा अगर वो तायब हो चुका हो, अपनी उस पहली ज़िंदगी से उसने तौबा कर चुका हो, तब भी हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उसे याद दिलाते रहेंगे कि तुम अच्छा ऐसे गुनहगार थे और ऐसे खताकार थे। तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल ने कभी अजवाज को इस तरह से तीज़ नहीं किया, न तंज़ किया कि तुम्हारे ऊपर तो आयतें नाजिल हुई और तुमसे गलती हुई। नहीं, आपके ताल्लुकात वैसे ही थे अपने अजवाज से, बल्कि हम सब जानते हैं आयशा रदी अल्लाह अन्हा से आपके ताल्लुकात कैसे थे। और आपकी आखिरी ख्वाहिश जो थी वो क्या थी कि आप एक एक दिन पूछते जाते थे जब आप बीमार पड़े थे कि आज किसकी बारी है, आज कहाँ मैं रहूँगा, आज कहाँ मैं रहूँगा। तो अजवाज इस बात को समझ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात क्यों पूछ रहे हैं, और सब ने अपनी तरफ से इजाज़त दी कि आप आयशा रदी अल्लाह अन्हा के हुजरे में शिफ्ट हो जाएं, और आपको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो इससे पता चलता है कि देखिए अजवाज भी आपस में कितना एक दूसरे का ख्याल रखती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था। वाकई जाहिर सी बात है, ये तो एक नेचुरल और फितरी बात है, ये तो होता ही रहता है। ये भी इंसान थी असल में ना, हम इनको कोई फरिश्ता या इंसानों से हटकर कोई मखलूक ना समझें। तो ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात रकाबत की बिना पर, यानी जो आपस में जो ताल्लुक़ होता है बीवियों का, उसकी बिना पर हो जाता है ऐसा, ये नेचुरल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अजवाज तो चूँकि ये रोल मॉडल्स हैं हमारे लिए, पूरी उम्मत की ख़वातीन के लिए अजवाज मुतहरात को एक नमूना बनाया गया। तो उनकी छोटी सी ख़ता पर भी उनको वॉर्न किया गया, उनकी इसलाह की गई, ताकि उनकी इसलाह हो जाए और बाकी सब के लिए फिर वो एक नमूना बन जाए। तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहा है कि तुम अगर आपस में मिलकर कुछ इस तरह से कोई काम करोगी, जैसे कि वो शहद के वाक़े में किया था दोनों ने मिलकर, कि और उन्होंने सऊद रदी अल्लाह उन्हें को भी अपना हमनुमा बना लिया था कि जब अल्लाह के रसूल आए तो क्या कहें कि आपसे आपके मुंह से मुगाफिर की बू आती है, और इस बिना पर अल्लाह के रसूल ने शहद अपने ऊपर हराम कर लिया था। तो लिहाजा ये सब एका करना हुआ। तो ये एक्चुअली अल्लाह ताला इस बात को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया कि अजवाज मुतहरात से ये काम सरजद हो, क्योंकि वो बहुत आला ओहदे पर फायज थी। अल्लाह ताला ने उनको एक बहुत बड़ा मुकाम दिया था अजवाज मुतहरात को। तो अल्लाह सुबहान तआला नहीं चाहता था कि अजवाज मुतहरा से ये खिलाफ उला नेकी के खिलाफ उला बात हो, तो लिहाजा उनकी फौरन इस्लाह फरमा दी गई। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अजवाजन खैरा अजवाजन खैरा मिनकुन्ना मुस्लिमाति मोमिनातिन क़ानितातिन तायबात تائبات عابدات سائحات طيبات و ابكارا। कुछ बईद नहीं कि अगर नबी तुम्हें तलाक दे दे तो उसका परवरदिगार उसे तुमसे बेहतर बीवियां बदल दे, जो मुसलमान मोमिन इताद गुजार तौबा करने वाली इबादत गुजार और रोज़ादार हों, ख्वाह वो शोहर दीदा हों या कवानियाँ हों। अब यहाँ पर पिछली आयत और इस आयत को मिलाकर हम सामने देखें तो एक्चुअली एक तरह से अजवाज मुतहरात को कहा जा रहा है कि अगर तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इस तरह से अगर तुम एका कर लोगी, या इस तरह से कुछ आपस में ग्रुप बंदियाँ करोगी, तो अल्लाह सुबहाना तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्ते और जो सालेह मोमिन हैं वो सब नबी के मददगार हैं। यानी एक तरह से यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को बताया गया है कि ठीक है वो तुम्हारे शौहर हैं, लेकिन तुम्हारे शौहर होने से पहले वो नबी भी हैं। उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़े अजीम मिशन के लिए वो भेजे गए हैं। तो शौहर से पहले वो एक अजीम रहनुमा हैं, नबी हैं, जिम्मेदार पर्सन है। लिहाजा तुम इस तरह की कोई हरकत ना करो कि जिसकी बिना पर तुम्हें खुद नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर क्या होगा कि हो सकता है अल्लाह ताला तुमसे बेहतर बीवी नबी को अता कर दे और तुम्हें नबी तलाक दे दे। और आपको याद होगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अजवाज से नाराज़ होकर एक महीने के लिए बालाखाना आप तशरीफ़ ले गए थे, और ईला जिसको कहते हैं हम उसको उस टर्म ईला कहा जाता है, और उसका जिक्र हम सूरह बकरा और अहज़ाब में पढ़ चुके हैं। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीने के बाद वापस तशरीफ़ लाए और आपने अपनी बीवियों से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरा साथ चाहिए या दौलत चाहिए, तो आओ मैं तुम्हें भले तरीके से रुख्सत कर दूं, तो तमाम बीवियों का जवाब क्या था आप बताएं? उस वक्त हमने बहुत तफसील से पढ़ा था। और सबसे पहले आपने आयशा रदी अल्लाह अन्हा से पूछा था, और आयशा रदी अल्लाह अन्हा तो सबसे कम उम्र थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जवाब क्या था, उन्होंने कहा था कि मुझे अपने वालदैन से पूछने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो आप ही का साथ चाहिए। तो ये था अज़वाज मुतहरात का किरदार असल में देखा जाए तो, कि उनसे अगर कहीं कोई ज़रा सी ख़ता हो भी जाती थी या खिलाफ़ उला कोई काम हो जाता था, तब भी वो फ़ौरन पलट आते थे, फ़ौरन रुजू कर लेते थे, और यही इंसान को चाहिए कि वो इसी तरह से करे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर ए नबी की बीवी हो तुम इस तरह से करोगी या हमारे नबी को तकलीफ़ दोगी, ऐसा ना हो कि कहीं हम तुम्हारी जगह उन कोई अच्छी बीवियाँ उससे बदल दें। और ये देखिए नौज़ुबिल्लाह, ये अजवाज मुतारात अच्छी नहीं थी, नहीं बल्कि ये माशाल्लाह यही सबसे बेहतर थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात कही जा रही है बीवियों को बताने के लिए कि अगर नबी तुम्हें तलाक दे दें तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह और बेहतर बीवियाँ ले आएगा। और अल्लाह ताला ने तो आप देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद फरमा देते कि अगर ये अल्लाह और उसके रसूल और आखरत को चूज़ करती हैं तो ए नबी फिर आप इन्हें तलाक भी नहीं दे सकते, और उनके लिए दोहरा अजर है। और तमाम अजवाज ने यही बात पसंद की थी, और लिहाजा उनके लिए दोहरा अजर है इंशाअल्लाह और रहेगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो खूबियाँ बता रहा है बीवियों की, वो खूबियों में क्या है, सबसे पहले फरमाबरदार मुस्लिमात, फिर मोमिनात मोमिन जिनका ईमान पुख्ता हो, कानितात ऐसी औरतें जो किनात करने वाली हों, और किनात ऐसी कुनूत ऐसी इताअत को कहते हैं जो पूरे खुशू और खुजू के साथ की जाए और दिल की रजामंदी से की जाए, और ये अल्लाह की भी हो सकती है रसूल की भी। तो औरतों को अपने शौहर के लिए ऐसी फरमाबरदारी करना जो दिल से हो, उसको उसको कानितात कहा जाता है या कुनूत कहा जाता है। जैसे कि सूरह अहज़ाब में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि तमाम अजवाज बैठी हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और मुतालबा कर रही थी आपसे कि हमारा खर्च बढ़ाया जाए, जो सालाना खर्चा है हमारा, जो गल्ला है उसको बढ़ाया जाए। उसी दौरान उमर रदी अल्लाह अन्हु आते हैं और मिलने की इजाज़त चाहते हैं, तो अजवाज मुतहरात पीठ मोड़ कर उधर बैठ जाती हैं, और उमर रदी अल्लाह अन्हु से तमाम अजवाज ही थोड़ा सा डरती थी, यानी उनको ये मालूम था कि उमर रदी अल्लाह अन्हु बग़ैर झिझके फौरन हर एक को सरजनिश भी करते थे और उनको सही हकीकत बता भी देते थे। तो वो अजवाज उधर पलट कर बैठ गईं जब उन्होंने देखा कि उमर रदी अल्लाह अन्हु आए हैं, और उमर रदी अल्लाह अन्हु ने खुद ये बात कही थी कि तुम अगर इस तरह से इकट्ठा होकर नबी को तकलीफ़ दोगी या इस तरह से सताओगी तो हो सकता है कि अल्लाह के रसूल तुम्हें तलाक दे दें और अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर बीवियाँ ले आए। और उसके बाद फौरन ये आयत नाजिल हुई, और ये उमर रदी अल्लाह अन्हु की सीरत अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि कई आयत ऐसी हैं जो कि उमर रदी अल्लाह अन्हु के, यानी उनका मशवरा हुआ करता था या उनकी कोई बात होती थी और उसके बाद वैसी ही आयत नाजिल होती थी। सुभान अल्लाह, यानी आप इससे उनके फहम का, उनकी बसीरत का आप अंदाज़ा लगाएं उमर रदी अल्लाह अन्हु के। और इसी बिना पर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो कौन होता, उमर रदी अल्लाह अन्हु। और फिर आपके ईमान की हालत का हमें पता चलता है कि उमर रदी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि जिस रास्ते से उमर रदी अल्लाह अन्हु गुजरते हैं शैतान अपना रास्ता वहाँ से बदल लेता है। तो यहाँ पर भी उमर रदी अल्लाह अन्हु ने यही बात फरमाई थी कि तुम नबी को तकलीफ़ ना दो और नबी के ख़िलाफ़ इस तरह से एका ना करो, ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी जगह दूसरी बीवियों को बदल दे। और हमेशा वो अपनी बेटी को सरजनिश किया करते थे हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा को कि बेटी उस गोरी औरत की रेस ना करना, ना तुम्हारा बाप उसके बाप से आगे बढ़ सकता है न तुम उससे आगे बढ़ सकती हो। और इससे मुराद उमर रदी अल्लाह अन्हु की दरअसल आयशा रदी अल्लाह अन्हा थी, और उन्होंने आयशा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में कहा था कि तुम आयशा रदी अल्लाह अन्हा से कंपटीशन ना करना, क्योंकि ना तुम आयशा के बराबर हो सकती हो और ना ही तुम्हारा बाप अबू बकर सिद्दीक की जगह ले सकता है। अब देखिए कितना उनको अल्हम्दुलिल्लाह सब हकीकत हाल से वाकिफ़ थे उमर रदी अल्लाह अन्हु, कितनी उनके अंदर बसीरत थी और कितना अच्छी उनको उन्होंने सरजनिश की अपनी बेटी को, नसीहत की, और हमेशा अपनी बेटी को आकर सरजनिश किया करते थे बल्कि तमाम अजवाज को। और उन्होंने एक दिन कहा अपनी बेटे से कि क्या तुम अल्लाह के रसूल से इस तरह से ज़ोर से बात करती हो, तो कहने लगी कि हाँ सभी करती हैं, सभी तमाम अजवाज मुतहराती अल्लाह के रसूल से इसी तरह करती हैं, कभी कभी झगड़ा भी करती हैं, कुछ मुतालबात भी करती हैं, उनकी आवाज़ें ऊँची भी हो जाती हैं। तब उमर रदी अल्लाह ने सरजनिश की थी कि नबी से इस तरह से ना बात किया करो, वो नबी भी हैं, और ऐसा ना कि अल्लाह ताला तुम्हारी जगह कोई दूसरी बीवियाँ ले आए। और फिर उसके बाद ये आयत नाजिल हुई थी। तो जो बीवियों की खसूसियात होती हैं वो क्या होती हैं, फरमाबरदार मोमिन और دل کی رضامندی کے ساتھ اپنے شوہر کی خدمت بجا لانا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ تائبات، توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت کرنے والی۔ سائحات، اس کے بارے میں جو سائحات ہیں، ایکچولی اس میں بہت سارے لوگوں نے اس کے جو معنی بتائے ہیں، روزے دار کے بتائے ہیں، اور بعض مفسرین اس کا ترجمہ دراصل گردش سے بھی لیتے ہیں کہ اللہ کی خاطر گھومتے پھرتے رہنا۔ تو بہرحال، تو سح کے معنی ہوتے ہیں سیر و سیاحت کرنا یا کرتے پھرنا، خواہ اس کا مقصد تفریح ہو یا کوئی اور ہو، اور قرآن میں ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو سح سائح کے معنی محض سیر و سفر کرنے والا ہے، لیکن بعد میں یہ لفظ ایسے درویشوں کے لیے استعمال ہونے لگا جو چلتے پھرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور ہر حکم کی پابندی کرتے تھے۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا یہ لفظ کہ جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن اس کے علاوہ وہ اپنی آنکھوں کی، اپنے ہر چیز کی، جو بھی اعضاء اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے، یعنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ تو یہ سارے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیویاں لے آئے گا جو کہ عبادت گزار ہیں، روزے دار ہیں اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ طیبات و ابکارہ، ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ کہیں تم یہ نہ سوچو کہ نبی کو تم سے بہتر بیویاں نہیں مل سکتی، بلکہ اس سے بہتر مل سکتی ہیں، اور کنواری بھی مل سکتی ہیں اور شوہر والی بھی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی تمام ازواج شادی شدہ تھیں، یعنی یا تو طلاق یافتہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ جیسے کہ زینب بنت جحش، ان کو طلاق ہوئی تھی، اور دوسری جو ازواج تھی ان کے ہسبینڈس یا تو کسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے یا اسی طرح کا معاملہ تھا، اور صرف عائشہ رضی اللہ عنہ اکیلی تنہا ایسی تھی جو کہ کنواری تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب ازواج مطہرات کو چھوڑ کر یہاں پر عام تمام مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے مخاطب کیا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، اور اس کا ایندھن کیا ہوں گے؟ وقودہا الناس والحجارہ، انسان اور پتھر، اور اس پر ایسے سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کا حکم فوراً بجا لاتے ہیں، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی بات آئی ہے۔ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ یہاں پر، چونکہ یہ تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور خصوصاً آمنو، جو لوگ ایمان لائے ہو، اس میں آ تو جاتے ہیں سب لوگ، یعنی مرد اور عورتیں سب آ جاتی ہیں، لیکن خصوصاً مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کس طرح سے پاسبل ہے؟ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا اس طرح سے ازواج مطہرات میں سے کسی نے کوئی اس طرح کی بات کہہ دی کہ کسی دوسری زوج کو ان کی ہائٹ کم تھی تو کہہ دیا کہ اچھا ان کی ہائٹ کم ہے، یا کچھ اس طرح کی بات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرما دی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو کبھی کبھی یہ ناگوار گزرتا کہ آپ اپنی اس جو آپ کی جو ایجڈ بیوی تھی اس کا ذکر کرتے ہیں بار بار۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی وقت آپ نے اصلاح فرما دی کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں، یا क्यों वो याद आती हैं खदीजा रदी अल्लाह बार बार कि उन्होंने उस वक्त मुझ पर माल खर्च किया जब सबने हाथ रोक लिया था, वो उस वक्त ईमान लाए जब कोई ईमान नहीं लाया और फिर उनसे मुझे औलाद हुई। तो अब देखिए अल्लाह के रसूल फ़ौरन इस्लाह फरमा देते थे, फिर इसी तरह से आप तहज्जुद के लिए अपनी बीवियों को जगाते, रमज़ान में खुसूसन आप अपनी बीवियों को जगाते थे, और आपने ये तक फरमाया था कि कौन है जो इन हुजरे वालियों को जगाए, अगर ये जान लेती कि आसमान से इस कदर फितने तारीख रात की मानी फितने बरस रहे हैं तो फिर ये उस वक्त सोती ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अपने अहलो याल को भी नेकी की तलकीन करते थे, जहाँ मौका मिलता आप इस्लाह फरमा देते थे, इवन सहाबे कराम की भी आप इस्लाह फरमाते थे। एक दफ़ा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा आईं उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा के कहने पर। कहा जाता है कि अक्सर लोग उसी वक्त कुछ गिफ्ट वगैरह कोई तोहफा भेजते थे या कुछ खाने की चीज़ हदिया भेजते थे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रदी अल्लाह अन्हा के घर होते थे। ये बात उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा को नागवार गुजरी और उन्होंने पहले खुद भी कहा अल्लाह के रसूल से कि ये चीज़ गलत है कि लोग उसी वक्त आपके लिए हदिया भेजते हैं जब आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास आप होते हैं। और उन्होंने खुद भी ये बात कही और फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को भी अपनी तरफ से सफ़ीर बनाकर भेजा, और फातिमा रदी अल्लाह अन्हा आपके पास आईं और कहा कि अब्बा जान आप लोगों को मना कर दें कि वो क्यों इस तरह से करते हैं और क्यों आपको उसी वक्त हदिया भेजते हैं या कोई खाने की चीज़ भेजते हैं जब आप आयशा रदी अल्लाह अन्हा के घर होते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अपनी बेटी को आपने नसीहत की थी कि क्या तुम उससे मोहब्बत न करोगे जिससे तुम्हारे वालिद मोहब्बत करते हैं। तो फातिमा रदी अल्लाह अन्हा बहुत शर्मा गई और फ़ौरन वापस पलट गई। उसके बाद उम्मे सलमा ने उनसे और भी कहा कि आप जाकर कहें, तो उम्मे फातिमा रदी अल्लाह ने कहा कि मैं अब नहीं कहूँगी। तो आप देखें कि आप सलसम किस तरह से अपनी बेटियों की अपने घर वालों की इसलाह फरमाते थे। तो ये घर के मर्द की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर वालों की इस तरह से इसलाह करता रहे। मेन जिम्मेदारी तो घर के मर्द की है और उसके बाद फिर ये घर के जो बड़े अफराद हैं या फिर घर में जो मेन लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, और उसमें फिर बीवी भी आ जाती है, माँ आ जाती है। ये माँ की जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी है, लेकिन पहले मर्द को चाहिए कि वो अपने घर पर इस तरह से कंट्रोल रखे। अब आप देखें कि इसके बरअक्स हमारे माशरे में या हमारे मुल्कों में जो रिवाज आम है, ये जो ट्रेंड बन चुका है कि घर के मर्द हजरात जो होते हैं वो इस जिम्मेदारी से बिल्कुल ही सुबकदोश हो चुके हैं। उनको ये बात का कोई एहसास ही नहीं है कि हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक मेरी बीवी मेरे बच्चे कहाँ हैं, उनके हाथों में क्या है, उनके सामने टीवी पर क्या है, वो किससे मिल रहे हैं, किससे बातें करते हैं। घर के मर्दों को इसकी कोई परवाह नहीं होती, उनका सारा ध्यान सारा जोर सारी तवज्जो सिर्फ अपने बिजनेस और अपने जॉब पर होती है। जो सुबह के घर को निकलते हैं तो रात ही को लौटेंगे, घर में क्या चाहिए क्या दरकार है, मेरी बीवी फरमाबरदार है या नहीं, खुद मेरी भी और खुद अल्लाह और अल्लाह सुबहाना तला की भी, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये ट्रेंड बन चुका है हमारे यहाँ पर। और आप देखिए कि इसका आगाज़ कब से होता है, अगर हमको अपने अहल वयाल को जहन्नम से बचाना है इसका आगाज़ कब से होगा, इसका आगाज़ लड़की के सिलेक्शन से होगा। जब हम अपने बेटों के लिए लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं उस वक्त हम जहन में रखें कि आने वाली लड़की ये जो हमारे बेटे की बीवी होगी, हमारी बहू होगी या हमारे घर की एक फ़र्द बनेगी, तो इसके ऊपर पूरे ख़ानदान पूरी नस्ल का इन्हिसार है। तो हम किसी ऐसी लड़की का इंतखाब करें कि जो वाकई में हमारे ख़ानदान को हमारे आने वाली नस्लों को जहन्नम से बचाने की फ़िक्र करने वाली हो। लेकिन आप देखिए कि प्रायोरिटीज़ क्या होती है हमारी, हम किस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, किस चीज़ को हम अहम जानते हैं। अच्छा पहले तो देखा जाता है कि खूबसूरती, दूसरा देखा जाता है बड़ी पार्टी। आजकल लोग इन्हें खुल्लम खुल्ला यकीन जानिए, कुछ लोग कहते हैं ना लड़की दिखाने के बारे में, कोई लड़की होगी तो बताइए ज़रा प्लीज़, लेकिन ध्यान रखिएगा ज़रा अच्छे खाते पीते घराने के लोग। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतना दुख होता है लोगों की सोच का सुनकर। और अब तो और एक सोच जड़ पकड़ चुकी है कि जॉब करने वाली लड़की टीचर होना चाहिए और या तो डॉक्टर होना चाहिए, या फिर टीचर भी अगर हो तो उसके उसकी जॉब के लिए जो पैसे दिए जाते हैं करप्शन के तौर पर या रिश्वत के तौर पर, 20 लाख 25 लाख जो आजकल दिए जा रहे हैं जॉब लगने के लिए, जॉब लगवाने के लिए, तो वो पैसे भी पे किए हुए होने चाहिए। लड़की इस तरह से पढ़ी लिखी हो कि आते से वो 40-50 हज़ार कमा कर लाए, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा आम हो गया है। जब आप शुरू से ये कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे कि आप इन्हें जहन में लालच होगा, तो आप सोचें कि जिस सोच को आपने परवान चढ़ाया और जिस सोच की वजह से आपने ऐसी लड़की का इंतखाब किया, आप बताएं वो नस्लों की क्या तरबियत करेगी और आप खुद क्या अपने आने वाली नस्लों की तरबियत करेंगे। जबकि यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहा है कि कु अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि बचाओ अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से। और इसमें जिम्मेदारी दोनों की है, वालिदैन की यानी माँ की और बाप की, दोनों की जिम्मेदारी है। बाज़ वक़्त बाप ये समझते हैं कि अच्छा पूरी जिम्मेदारी माँ की है वो संभाले, और माँ ये कहकर बरीउ जिम्मा हो जाती है कि बाप को तो ज़रा परवाह नहीं है, बाप को कोई फिक्र नहीं है, मैं कहाँ कहाँ देखूँ और क्या क्या करूँ, क्या मैं किचन संभालूँ या बच्चों की तरबियत करूँ। और दोनों बरीउ जिम्मा हो जाते हैं और बच्चों को हवाले कर दिया जाता है मोहल्ले के, गली और नुक्कड़ों के या टीवी के हवाले। आज हमारे बच्चे टीवी की गोद में पल रहे हैं, यकीन जानिए बच्चे टीवी ही की गोद में पल रहे हैं, क्योंकि माओं को या वालिदैन को फुर्सत नहीं है उनके साथ बैठने की, उनकी तरबियत की, या हमने स्कूल्स के हवाले कर दिया है। और आपको याद होगा स्कूल्स भी आजकल एक ऐसा बिजनेस बन चुके हैं कि जो स्कूल्स चलाने वाले लोग हैं उनमें से अक्सर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन 90% लोग उसमें से ऐसे हैं जो जिन्होंने स्कूल को एक बिजनेस बना लिया है। उन्हें कोई स्कूल खोलने वालों को ये कोई परवाह नहीं कि उन्होंने कौन से टीचर्स का इंतखाब किया, जो गैर काबिल लोग उनको पैसा ला कर देंगे उनको वो टीचर्स रखते हैं। फिर टीचर्स का हाल ये है कि कोई उनके ऊपर इंस्पेक्शन करने वाला, उनकी देख रेख करने वाला निगरानकार कोई नहीं है। टीचर्स आते हैं नहीं आते हैं, टीचर्स को पढ़ाना आता है नहीं आता है, वो टीचर अपने स्टूडेंट से कैसी बात करता है, वो टीचर के क्या अखलाक हैं, उसकी किसी को परवाह नहीं है। स्कूल वाले ये सब चीज़ें नहीं देखते। बाज़ वक़्त इतना दुख और इतनी तकलीफ़ होती है कि कुरान पढ़ाने वाले मौलिम हजरात इतनी ख़राब लैंग्वेज में बच्चों से बात करते हैं। आप ख़ुद बताएं कि जो हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आम हो गया है कि कुरान पढ़ाने के लिए कहते हैं मारना ज़रूरी है, जब तक कि मारेंगे नहीं कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता। और ख़ुद से सोची समझी एक स्कीम बना ली और ख़ुद साख्ता सोचें घड़ ली और लोगों में आम कर दी कि नहीं, चूँकि कुरान पढ़ाने से शैतान हावी हो जाता है, तो जब तक कि बच्चे को मारेंगे नहीं वो शैतान होता है जो शरारत पर उकसाता है, इसलिए डंडे से मारो बच्चों को। आप बताएं वो बच्चों के दिल में कुरान की और अल्लाह सुब्हान तआला की क्या मोहब्बत पैदा होगी। उनके जहन में जो मासूम बच्चे होते हैं उनके जहन में तो ये बात बैठ जाएगी ना कि कुरान से रिलेटेड जो बात उनके जहन में आएगी कि मार, डंडे से मार, तो अल्लाह ताला की किताब से मोहब्बत पैदा होगी या दूरी पैदा होगी। तो स्कूल्स का भी वही हाल है, मदरसों का भी वही हाल है, और हर जगह देखा जाए तो आवा का हवा ही बिगड़ा हुआ है। किसी को कोई फिक्र नहीं कि हमको अपने अहलोयाल को जहन्नम की आग से बचाना है। एक बाप सुबह से निकलकर शाम तक मारा मारा फिरता है रोजी के चक्कर में, उसे फिक्र होती है अपने बच्चों को दो वक्त खाना खिलाने की, उसे फिक्र होती है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाने की, उसको फिक्र होती है अपनी पूरी फैमिली को एक तायुश वाली ज़िंदगी देने की कि मेरे बच्चे मेरी बीवी ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारे। वो दुनिया का ऐश व आराम तो उनके लिए तलाश करता रहता है लेकिन आखरत के आराम को भूल जाता है। और बाज़ औक़ात इसी चक्कर में खुद वालिद अपने हाथों अपनी बीवी बच्चों के लिए खुद अपने लिए एक जहन्नम का गढ़ा तैयार करता है असल में, क्योंकि उसे कोई फिक्र नहीं होती कि मेरे बच्चों की दीनी और अखलाकी तरबियत हो रही है नहीं हो रही है, मेरे बच्चे नमाज के पाबंद हैं या नहीं है। हम सब जानते हैं कि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और जिन लोग जो लोग जहन्नम में जाएंगे जब उनसे पूछा जाएगा कि क्या चीज़ तुम्हें जहन्नम में ले आई, तो वो कहेंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। तो नमाज न पढ़ने का सबसे पहला नुकसान क्या है? जहन्नम। जब उनसे कहा जाएगा कि अल्लाह ताला के आगे झुको तो सारे लोग झुक पड़ेंगे, सजदे में गिर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनकी पीठें तख्ते की मानिंद सख्त हो जाएंगी, वो झुकना भी चाहेंगे तो झुक नहीं सकेंगे। ये कौन लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह के आगे झुकते नहीं थे, जो दुनिया में अल्लाह ताला को सजदा नहीं करते थे? अब आप बताएं कि हमारी उम्मत मुस्लिमा जो कि जिसकी जो आबादी बताई जाती है 5 बिलियन बताई जाती है, चलिए आबादी जितनी भी हो, हम सिर्फ अपने मुल्क की बात देख लेते हैं या एशियन कंट्रीज़ की बात हम देख लेते हैं, या हमारा बरसगीर हिंद पाक की बात हम देख लें कि इतने सारे मुसलमान हैं, 30 करोड़ तो इंडिया में ही मुसलमान हैं, तो ये 30 करोड़ मुसलमानों में से कितने करोड़ हैं जो नमाज की पूरी तरह से पाबंदी करते हैं? आप बताएं, अभी आगे की बात तो आप जाने ही दें। तो ये बच्चों की अखलाकी तरबियत करना, उनकी रहनुमाई करना, उनकी दीनी तरबियत करना, आज वालिदैन इस फरीजे से बिल्कुल ही गाफिल और लापरवाह हो गए हैं। उन्हें कोई इसकी फिक्र नहीं है कि हमारे बच्चों को हम जहन्नम की आग से बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे हैं। बस एक भाग दौड़, एक रेस लगी हुई है दुनिया में आगे बढ़ाने की। या तो बच्चों को इस कदर इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बना दिया जाता है, या बचपन से उनके अंदर एक सोच परवान चढ़ाई जाती है कि तुम्हें फ़लां चीज़ फ़लां 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 बनना है, और बच्चा उसी मकसद को लेकर ग्रो होता चला जाता है। फिर उसे कोई चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती, उसे ये फ़िक्र नहीं रहती कि अच्छा मैं नमाजी हूँ या नहीं हूँ, मेरे अखलाक अच्छे हैं या नहीं है, मैं एक फरमाबरदार बेटा हूँ या बेटी हूँ या नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं एक अच्छा मुसलमान शहरी हूँ या नहीं हूँ, नहीं उसे इस बात की फ़िक्र नहीं होती। बस उसे एक क्रेज़ सा हो जाता है कि मुझे अपनी फील्ड में माहिर बनना है, और फिर उस चक्कर में वो अल्लाह ताला की हदूद भी फैलांग जाता है। उसे कोई फ़िक्र कोई ख्याल नहीं रहता कि मुझे एक फरमाबरदार मुसलमान भी बनना है। एक किसी बुज़ुर्ग के बारे में आता है कि उनके पास कोई शख्स आता है और कहता है कि मैं अपने बच्चे की तरबियत करना चाहता हूँ, मुझे कुछ अच्छी नसीहत करिए, और मैं कब से अपने बच्चे की तरबियत का आगाज़ करूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके बुज़ुर्ग ने पूछा कि आपका बच्चा क्या क्या उम्र है, उसकी क्या एज है। तो आने वाले शख्स ने जवाब दिया कि वो 2 साल का हो चुका है। तो कहते हैं कि तुमने बहुत देर कर दी। आप सोचें कि 2 साल जब हुए हैं बच्चे को, तो कहते हैं कि तुमने बहुत देर कर दी। और ये बात आज साइंस ने हमें बताई है, साइंस रिसर्च करके बताती है कि बच्चे का जहन इन्हें जितना डेवलप होता है वो 3 साल के अंदर अंदर डेवलप हो जाता है। 75% जो बातें बच्चा सीखता है वो 3 साल की उम्र तक सीख लेता है, और बाकी पूरी ज़िंदगी 3 साल के बाद से लेकर उसके बुढ़ापे तक वो बाकी की 25% बातें सीखता है। 75% वो अपने बचपन ही में सीख लेता है 3 साल के अंदर अंदर, और हम 3 साल तक तो अपने बच्चे को कहते हैं बच्चा ही है। उसको तो हम इवन हम कहते हैं कि अच्छा ज़रा डांस करके बताओ, अच्छा ज़रा फलां की नकल उतार कर बताओ, या हम उसको बिल्कुल हंसी मजाक में लेते हैं बच्चे को। तो बच्चे की तरबियत तो आप देखिए पैदा होते से शुरू हो जाती है, और ये बच्चे दरअसल हमारे पास एक प्लेन स्लेट की और प्लेन कागज़ की मानिंद है। उस पर जिस तरह से चाहे हम रंग भरें और जिस तरह से चाहे तस्वीर बनाएं। जो दरख्त होता है आप देखें कि अगर आप उस पर उस दरख्त उस टहनी पर निशान लगा दें, वो बढ़ता जाएगा और वो निशान पुख्ता होता चला जाएगा। तो बचपन में जो जहन पर नक्शो निगार बन जाते हैं वो पुख्ता हो जाते हैं। इसीलिए आपने कहावत सुनी होगी ना कि अच्छा ये घुट्टी किसने दी थी इनको, घुट्टी किसने पिलाई थी, और हम कहते हैं कि ये तो इनकी घुट्टी में पड़ा हुआ है। तो घुट्टी में पड़ा हुआ है क्यों? क्योंकि बचपन से जब वो न्यू बॉर्न बेबी था, या वो लड़की थी या लड़का था जो भी था, तो बचपन से जो चीज़ उसमें इन उसमें डाल दी गई, उसमें चली गई, अब वो नहीं निकल सकती। तो बचपन से बच्चों को अच्छे अखलाक हम सिखाएं, बचपन से बच्चों को तालीम दें, बचपन से बच्चों को बड़ों का अदब सिखलाएं, बचपन से उनको नमाज का पाबंद बनाएं, बचपन से उनके अंदर इस्लामी तालीमात को आम करें। हम समझते कि अच्छा नहीं हमारे बच्चों पर क्या बोझ हम डालें, अरबी क्यों हम पढ़ाएं इतनी जल्दी। कहते हैं अच्छा 2.5 साल की उम्र में 3 साल की उम्र में बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दें, ये तो जुल्म हुआ बच्चों पर। अस्तग़फ़िरुल्लाह। हाँ बच्चों को इंग्लिश ज़रूर सिखाएं, ABCD तो बच्चों को बचपन से सिखा दें, जॉनी जॉनी यस पप्पा बच्चों को ये बचपन से सिखा दें, उस पर बच्चों के जहन पर बार नहीं पड़ता है। हाँ बार पड़ता है तो सिर्फ अरबी से पड़ता है। कैसी हमारी सोच हो गई ना, कैसी हमारी अकदार, हमारी सोच, हमारा अखलाक, हमारा सब कुछ बदल गया है। तो यहाँ पर कु अनफुसकुम व अहलीकुम की बात की जा रही है कि बचाओ अपने आप को और अपने अहलोयाल को जहन्नम की आग से। और इसके बारे में हम देखते हैं कि सहाबा कराम या सहाबियात जो थी वो बचपन से अपने बच्चों की कैसी तरबियत करती थी। खंसा रदी अल्लाह अन्हा की आप तारीख़ पढ़िए, उनकी सीरत पर आप निगाह डालिए, आपको पता चलेगा कि कैसे उन्होंने अपने बेटों को उनके जो अल्फाज हैं उनकी जो तकरीर है वो सुनने के और पढ़ने के काबिल है। कि उन्होंने अपने चारों बेटों से कहा था कि बेटा तुम एक बाप की औलाद हो, तुम्हारे नस्ब में कोई कमी बेशी नहीं है। और चारों बेटों को बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ उन्होंने जहाद के मैदान में रुख्सत किया, और जब उनको खबर हुई पता चला कि उनके चारों बेटे शहीद हो गए, तो वो खुश थी कि मैं चार शहीद बेटों की माँ हूँ। सुभान अल्लाह, आप सोचें ज़रा ये तरबियत होती है। फिर असमा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है कि वो अपने बेटों को ओहद पहाड़ पर बिठा देती थी और उनको जंग के मनाजिर दिखाती थी ताकि उनके अंदर बहादुरी पैदा हो। आपको याद होगा उमर रदी अल्लाह अन्हा के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर किस कदर बाअदब थे कि उनको जवाब मालूम था जब अल्लाह के रसूल ने पूछा कि वो कौन सा दरख्त है जिसका साया जिसका फल मीठा होता है, जो कभी ख़राब नहीं होता। और उन्होंने आप अल्लाह के रसूल ने दरअसल खजूर के दरख्त की खूबियाँ बताई थी। صحابہ سے پوچھا تو صحابہ لا علم تھے، انہیں جواب نہیں دیا. پھر بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے والد سے کہا کہ میں اس جواب کو جانتا تھا، مجھے معلوم تھا وہ جواب، لیکن میں نے نہیں کہا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹے تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ جب آپ جیسے بڑے بڑے بزرگ خاموش تھے تو میں نے یہ خلاف ادب سمجھا کہ میں چھوٹا ہو کر یہ بات کہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اگر تم وہ جواب دے دیتے تو مجھے اتنی اور اتنی خوشی ہوتی تھی. تو آپ دیکھیے ان کا ادب اور لحاظ دیکھیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب بڑے بزرگ ہوں اور وہ نیچے بیٹھے ہوں تو بچے اوپر نہیں بیٹھتے تھے، یا انہوں نے کوئی چیز کے لیے آواز لگائی یا پانی مانگا تو ہم کو یہی تربیت دی گئی تھی کہ وہاں اس وقت تک کھڑے رہیں جب تک کہ وہ پانی پی نہیں لیتے، گلاس واپس لے کر جائیں. لیکن یقین جانیے آج اتنا افسوس ہوتا ہے، خود یعنی ہم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو، چونکہ بچوں کے اندر وہ سینس بھی نہیں رہا تو پانی دے کر یہ پکڑا کر چلے جاتے ہیں، کھڑے نہیں رہتے وہاں پر گلاس واپس لینے کے لیے. یا بچے اس قدر اتنا بزی اور مشغول ہو گئے ہیں موبائل میں کہ اگر ماں باپ ان کو آواز بھی دے رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کو سنے نہیں آتا ہے. یہ ہمارا حال ہو گیا آج. تو یہ بچپن سے کیا جائے گا، بچپن سے یہ کرنا ہوگا، تبھی کہیں یہ بات جا کر آگے وہ رنگ لا سکتی ہے جیسا کہ ایک مسلمان مطلوب ہے اسلام کے لیے. اور بچوں کی تربیت کے سلسلے میں وہی بات آتی ہے کہ جیسے اسفنج ہوتا ہے، آپ اس کو جس طرح سے اسفنج کو آپ جس شیپ میں لانا چاہیں گے، جتنا آپ اس کو بھگوئیں گے اتنا زیادہ وہ ایبزارب کرے گا. تو بچے بھی بچپن سے جتنا بچپن میں جتنا ایبزارب کریں گے اتنا ہی وہ واپس پھر نکالیں گے. جیسے اخلاق کی تعلیم دی جائے گی ان کو، ویسے ہی وہ اخلاق اڈاپٹ کریں گے اور پھر اس کو معاشرے میں پھیلائیں گے. پھر اصل ذمہ داری کس کی ہوئی آپ بتائیں، والد کی یا والدہ کی؟ دونوں کی ہوئی نا. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ بگڑ جاتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نہ پڑھائی میں ان کا دل ہے، نہ نمازوں میں ان کا دل ہے، اور نہ ہی کوئی کنسٹرکٹیو کام کرتے ہیں بلکہ گلی نکڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا، ہنسی مذاق، چائے کی دکانوں پر جانا، پان کی دکانوں پر کھڑے رہنا، اور گلی کے نکڑوں پر کھڑے رہ کر دوسروں کے بیچارے شریف گھروں کے سامنے کھڑے رہ کر شریف گھرانے والوں کو تکلیف دینا، آج کل ہماری نوجوان نسل کا یہ حال ہو گیا ہے. لیکن جانے مجھے سب سے زیادہ جس بات پر تکلیف ہوتی ہے اور غصہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان لڑکوں کو جب کسی گلی کے نکڑ پر کھڑا ہوا دیکھا جاتا ہے ہنسی مذاق کرتے ہوئے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس کھڑے ہیں نکڑوں پر اور چائے کی دکانوں پر باتیں کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے. اگر ہمارے یہ نوجوان کوئی کنسٹرکٹیو کام کرتے تو آپ دیکھیں کہ آج معاشرے کی حالت بہت حد تک سدھر جاتی. آج کتنے ایسے بوڑھے افراد ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، بوڑھے لوگ بیچارے روڈ کراس نہیں کر سکتے، ان کے کام ہیں، ان کی ذمہ داری ہیں، کتنے گھروں میں کوئی مرد نہیں ہے کام کرنے کے لیے. اگر ہمارے یہ نوجوان بچے ایسے غریب گھرانوں کی، ایسے مستحق گھرانوں کی مدد کرتے تو آج ان کا کام آسان ہو جاتا، لیکن نہیں کرتے ہیں، کھڑے ہیں باتیں کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، لیکن کسی کی ہیلپ نہیں کریں گے کیونکہ ویسی تربیت نہیں کی گئی نا. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. والدین پھر بعد میں شور اور واویلا کرتے ہیں کہ ہائے کیا کریں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، باجی کوئی نسخہ بتائیے، باجی کوئی وظیفہ بتائیے، ہمارے بچہ بگڑ گیا ہے، ہمارا بچہ بے رہا ہو گیا ہے، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا. تو اب تھوڑی سنے گا وہ، کیونکہ اب تو وہ پکا درخت بن چکا ہے نا، پکا تنا بن چکا ہے. اب اگر آپ اس پر سختی کریں گے تو وہ تو ٹوٹ جائے گا. آپ کو تو اس وقت سے اس پر کام کرنا تھا جب وہ ایک نرم ٹہنی کی مانند تھا، لچکدار ایک شاخ کی مانند تھا. اس کو جس طرح سے چاہے آپ ڈھال لیتے، جس طرح سے چاہے آپ اس کو موڑ لیتے، لیکن آپ نے بچپن میں اس پر دھیان ہی نہیں دیا، اس سے لاپرواہی بڑھتی، غفلت بڑھتی، لہٰذا اب تو وہ پکا بن چکا ہے، اب نہیں وہ سدھرے گا، بہت مشکل ہے اس کا سدھرنا. تو یہ بچپن سے تربیت دی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں باجی، ہماری بچی لیڈیز کے کپڑے نہیں پہنتی، اس کو جینس کی عادت ہو گئی ہے، اس کو دوپٹے کی عادت نہیں رہی، اس کو شرٹ کی عادت ہو گئی ہے. چلیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر تو بعد میں بحث ہوگی کہ اچھا جینس پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے لڑکیوں نے. چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، کہیں ایسا نہ کہ ہم کو شدت پسند کہہ دیا جائے. تو نیوٹرل سوچ ہی کی مانے لگا چلیں کہ اگر وہ جینس پہنے یا ٹی شرٹ پہنے جو بھی پہنے لڑکی، لیکن کم از کم ساتر لباس تو ہو. تو اب مائیں آ کر پریشان ہوتی کہ کیا کریں باجی، ہماری بچی دوپٹہ ہی نہیں لیتی، ہماری بچی یہ کپڑے نہیں پہنتی، یہ لباس ہی نہیں پہنتی. تو آپ دیکھیں کہ اصل چیز ہے یہ کہ بچپن سے، بچپن میں آج ہم مائیں ان کو ایسا کرتی ہیں نا، آج ماؤں نے ان کو ایسے لباس ان کے لیے منتخب کیے ہیں کہ دیکھ کر ہی شرم آتی ہے اس کو. بچپن سے بچیوں کو کٹ آستین کے سلیو لیس لباس پہنانا، ٹائٹ جینس پہنانا، ٹائٹ پیجامے پہنانا، جو آپ نے دیکھا ہوگا جو لیگنگ آتی ہے، بڑی بڑی عورتیں تک وہ لیگنگ خرید رہے ہیں جو بنیان کے کپڑے کی ہوتی ہے، वो जर्सी टाइप जो कपड़ा होता है उसकी, फिर वो इतना टाइट होता है और फिर लंबे चाक वाले फ्रॉक। अब आप खुद सोचे कि वो किस कदर पूरा शेप औरतों का दिखाई देता है, कितनी तकलीफ होती है उसको देखकर। खुद इन्हीं खवातीन, अगर खवातीन को देख रहे तो शर्म से पानी पानी हो जाती है, तो आप सोचे कि फिर मर्दों का क्या हाल होगा। तो ये लड़कियों की इस तरह की तरबियत, ये ट्रेनिंग किसने की बचपन से? ये माँ ने की, ये वालिद ने की, कि वालिद को अपनी बेटी नज़र नहीं आती, वालिद की नज़र आती गैरत नहीं है कि मेरी बेटी किस तरह के लिबास पहनती है। इत्तेफाक से कहीं अभी एक दो दिन पहले किसी क्लिनिक जाने का इत्तेफाक हुआ, देखा एक माँ और बेटी क्लिनिक में आए हैं। माँ तो माशाल्लाह पूरी तरह से अबाया पहने हुए है और दुपट्टा भी बांधे हुए है, चेहरे का पर्दा तो नहीं था लेकिन कम से कम पूरी तरह से बड़ा सा दुपट्टा बांधा हुआ था और अबाया पहना हुआ था। लेकिन बेटी तो साथ में आई थी, मुझे लगता है 9th या 10th क्लास में होगी लड़की। तो लड़की ने तो चेहरे को दुपट्टा बांध रखा है, लेकिन इस कदर टाइट लिबास और चुस्त पैजामा और इस कदर तंग और छोटा लिबास कि वहाँ पर क्लिनिक में उसको बैठे देखकर शर्मा रही थी। लेकिन वालदा को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। और वहाँ पर यानी वेटिंग रूम ऐसा था कि जहाँ पर एक तरफ मर्द हजरात भी थे और ख़वातीन भी थी। अब आप खुद सोचे कि ये वालदा की जिम्मेदारी नहीं है, कि वालदा के अंदर ज़रा सा भी सेंस नहीं है कि मैं अपनी बेटी को जो अबाया मैंने पहना है बेहतर है कि मैं ये अबाया अपनी बेटी को पहना दूं? नहीं, ये सेंस और ये हिस ही ख़त्म हो चुकी है। असल में चेहरे पर तो दुपट्टा बांध लेते हैं, चेहरे का पर्दा कर रहे हैं और बाजू आस्तीन गायब। ये क्या पर्दा हुआ, ये क्या बात हुई? तो ये बचपन से ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बचपन से तरबियत की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाया कि कु अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने अहलोयाल को जहन्नम की आग से। तो ये वालिदैन की दोनों की ज़िम्मेदारी है और लड़का और लड़की की दोनों की तरबियत की ज़रूरत है हमको। आप खुद सोचे कि आज क्या हमारा हाल है ना, कि हम अपने बच्चों को अगर बिजली चली जाती है तो उनके लिए हम क्या कुछ प्रोवाइड नहीं करते। अगर बिजली नहीं है हमारे घर में, बिजली ज़्यादा जाती है तो हम उसके लिए जनरेटर लेते हैं ताकि बिजली चलती रहे, हमारे बच्चों को गर्मी ना हो। तो हम अपने बच्चों के लिए जब गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप सोचे कि जहन्नुम की आग कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पर फ़ौरन जहन्नुम की आग का जिक्र है। जब अपने आप के अहल अयाल की बात की गई है और कहा गया कि उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, तो कौन से इंसान जाएंगे फिर ये जहन्नुम में? यहाँ पर गैर मुस्लिमों की बात नहीं हो रही है, यहाँ मुसलमानों की बात हो रही है, मोमिनों की बात हो रही है, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू की बात आई है। तो वो कौन लोग होंगे जो जहन्नुम में जाएंगे? ये वही नाफरमान और नाखल्फ मुसलमान जो नमाज के पाबंद नहीं थे, जो अल्लाह ताला की हदूद का ख्याल नहीं रखते थे, जो मटेरियलिस्टिक बन चुके थे, जिनके नज़दीक सिर्फ दुनिया और मादा परस्ती थी, ये वो लोग होंगे। आज हमारे बच्चों को हम कैसे, जब इंतहा की सर्दी होती है हम ब्लैंकेट उड़ाकर उनको गरम गरम गर्मी पहुंचाते हैं, गरम कर देते हैं, और जब गर्मी हो तो हम उनको उनके लिए एसी और कूलर और क्या कुछ नहीं प्रोवाइड करते। तो यह हम अपने बच्चों से मोहब्बत की बिना पर करते हैं ना, लेकिन क्या हम उनको फजर की नमाज़ के लिए जगाते हैं? फजर की नमाज़ को जगाते हुए अक्सर वालिदैन का दिल बहुत छोटा होता है, नहीं मेरा बच्चा बहुत लेट सोया था, उसकी इतनी गहरी नींद है मैं कैसे जगाऊं? तो असल मोहब्बत तो ये होगी कि आप अगर अपने बच्चे को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर फजर में उठाएंगे। अगर आप उसको फजर की नमाज़ के लिए नहीं उठाते हैं, या जोहर और असर में वो सोया हुआ है बच्चा, या सोई हुई है बेटी, चाहे वो कोई भी नमाज का वक्त हो और बच्चे सो रहे हैं और आप उसको जगाते ना हो, तो आप दुश्मन हैं उसके, अपनी औलाद की दुश्मन आप खुद हैं। फिर अगर आप अपने बच्चों को अल्लाह ताला की राह में नहीं डालते, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तालीम नहीं देते, नमाजों की पाबंदी नहीं करवाते, तो ये वालिदैन असल में उन बच्चों के दुश्मन हुए। तो अगर हमको अपने अहलोयाल को जहन्नम की आग से बचाना है तो उसके लिए फिर हमको उनकी सही तरबियत, सही ट्रेनिंग करनी होगी, उनको देनी होगी, उनके ऊपर तवज्जो देनी होगी, उनके लिए वक्त हमको लगाना होगा। माँ बाप दोनों को, बाप ये कह के बड़े जिम्मा नहीं हो सकता कि मुझे बिजनेस की वजह से फुर्सत नहीं मिली थी, मुझे जॉब की वजह से फुर्सत नहीं मिली थी। नहीं, दोनों पर उतनी ही जिम्मेदारी है, माँ और बाप दोनों पर जिम्मेदारी है। तो कहा गया कि बचाओ अपने आप को और अपने अहलोयाल को जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, और उस पर ऐसे सख्त और तनखो फरिश्ते मुकर्रर हैं कि जो हुक्म की कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं करते बल्कि हुक्म बजा लाते हैं। इससे फिर आप देखें कि हमें क्या बात सीखने को मिलती है। ये बहुत अहम आयत है एक्चुअली देखा जाए तो, टाइम भी हमारा हो चुका है लेकिन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम कुछ ऐसे इंतज़ामात करें, कुछ ऐसे हमारे इदारे हों, ऐसी जगह हों जहाँ पर हमारे बच्चों को तरबियत दी जाती हो और घर में उस पर पाबंदी कराई जाती है। आप देखिए दोनों से मिलकर काम बनता है, एक तरफ से कभी भी नहीं हो सकता। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर लोग ट्रेनिंग लेते थे, तरबियत लेते थे और फिर अपने बच्चों की तरबियत करते थे, तो तभी पूरा मुआशरा नेक और सवाले बन सकता है। और उसकी कोशिश हमें शुरू से करनी चाहिए, बचपन से, और हर घर में कोशिश हो। सबसे पहले तो अपने बच्चों को हम अपने उनकी ज़िंदगी का मकसद बताएं, उनका नज़बुल ऐन बताएं कि क्या नज़बुल ऐन है, किस बिना पर हम दुनिया में भेजे गए हैं। हम टाइम पास करने के लिए दुनिया में नहीं भेजे गए। आज हमारे बच्चों की क्या हालत है आप खुद देखें कि टाइम पास करना उनकी आदत सानिया बन चुकी है और वक्त को वो कोई अहमियत नहीं देते। तो ये वक्त बहुत अहम है। जितना कुछ नौजवानी की उम्र में सीखा जा सकता है, बचपन में सीखा जा सकता है, बाद में नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लिहाजा बचपन से बच्चों को हम तमाम बातें सिखाएं, तमाम चीज़ें सिखाएं, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, हमारी इस्लामी तारीख क्या है, इस्लामी हिस्ट्री के बारे में उनको बताएं, अल्लाह के रसूल की सीरत उनको पढ़ाएं, सहाबा की सीरत उनको पढ़ाएं। तो बचपन से ट्रेनिंग और तरबियत करें, बात बात में उनके सामने वो जिक्र करें, वो वाक़ियात लाएं जो कि सहाबा के वाक़ियात थे, जिस तरह से वो तरबियत किया करते थे अपने बच्चों की। आपको याद होगा अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हु, उन्होंने दमिश्क जाकर एक ऐसा मदरसा खोला। अबू दर्दा ने अपनी बीवी को भी साथ में लगाया, क्योंकि उम्मे दर्दा रदी अल्लाह अन्हा जो थी वो खुद इल्म का बहुत ज़्यादा शौक़ रखती थी, इल्म सीखने और सिखाने का। तो उन्होंने एक दमिश्क जाकर एक मदरसा खोला, वहाँ पर दोनों मियाँ बीवी बच्चों को पढ़ाते थे और उनकी बीवी छोटे बच्चों को, लड़के और लड़कियों दोनों को स्लेट पर लिखना सिखाती थी, और फिर बाद में उनके बच्चे भी उसी काम में लग गए। और जितनी अहादीस जो जमा हुई, यकीन जानिए ये सब सहाबा इकराम के बच्चे थे, ये ताबेईन और तबा ताबेईन एक्चुअली सहाबा के बेटे बेटियाँ, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ थी। सुभान अल्लाह, आप देखें कि ये जनरेशन किस तरह से उन्होंने उन इकदार को संभाले रखा, अल्लाह के रसूल की किस तरह से, अल्लाह के रसूल की अहादीस की किस तरह से हिफाजत की। ये सहाबा की औलाद में से थे ज़्यादातर, ताबेईन और तबा ताबेईन। तो वो जो नेकी की जड़ होती है, जो बीज बोया जाता है, उसकी जड़ें आखिर तक फैलती हैं, दूर दराज तक फैलती हैं, और वो दरख्त बड़ा घना और सायेदार बनता है। उसकी शाखें भी खूब फैलती हैं और उसकी जड़ें भी खूब फैलती हैं। तो अगर हम बचपन से नेकी का बीज लगाएंगे और डालेंगे, यकीन जानिए वो पौधा बड़ा घना और तनावर दरख्त बनकर निकलेगा, सबको साया पहुंचाएगा और उसकी जड़ें भी बहुत मजबूत होंगी। लेकिन कब से करने की ज़रूरत है ये तरबियत? बचपन से, जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से। हमें ऐसे इंतज़ाम करने होंगे कि ऐसे इदारे कायम करने होंगे, या स्कूल्स में हमें ये इंतज़ाम करवाना होगा कि स्कूल से बच्चों की ट्रेनिंग और तरबियत हो। जब तक ये काम नहीं होगा, यकीन जानिए फिर इसी तरह से जो खेप तैयार हो रही है ना, वो इस काबिल नहीं है जिसकी वजह से इस्लाम का बोलबाला हो सकता है। हाँ, हो सकता है हमने दुनियादारी में बच्चों को खूब आगे बढ़ा दिया हो और हमारे बच्चे बहुत अच्छे टीचर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन गए हों और खूब पैसा कमा रहे हों, लेकिन दीनी और अखलाकी लिहाज से अगर उनकी तरबियत नहीं हुई है तो ये पैसे कमाना कोई फ़ायदा नहीं देगा। ये तो गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों के बच्चे आज हमारे मुसलमान बच्चों से ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आप बताएं वो कहाँ जाने वाले हैं। तो लिहाजा अगर हमको अपने अपने आप को, अपने बच्चों को जहन्नम से बचाना है, तो फिर उसके लिए हमें उनकी वैसी तरबियत करनी होगी, उनको वैसी ट्रेनिंग देनी होगी, उसके लिए हमें वक्त लगाना होगा। हम खुद अपना भी वक्त लगाएं, अपना पैसा भी लगाएं, और अपने बच्चों के लिए भी उनको बचपन से इस बात की अहमियत उनके अंदर जगाएं और दिलाएं उनको कि उन्हें दीन के लिए भी वक्त निकालना है, सिर्फ दुनिया दुनिया के पीछे नहीं पड़े रहना है, और अल्लाह ताला से साथ में दुआ भी करती रहनी है। या अय्युहल्लज़ीना कफरू ला तअतज़िरुल यौम इन्नमा तुज़ज़ौना मा कुंतुम तअमलून। उस दिन अल्लाह काफिरों से फरमाएगा, ए काफिरों, आज बहाने मत बनाओ, तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम अमल करते रहे। अब यहाँ काफिरों की बात है और पहले ईमान वालों की बात की गई थी, तो काफिरों को तो उनका बदला मिलकर रहेगा और वही बदला मिलेगा जो उन्होंने दुनिया में अमल किए थे। लेकिन मोमिनों को भी यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि मोमिन ये ना समझे कि अच्छा हमारे लिए तो बस जन्नत पक्की है और जन्नत से कोई कम वाली चीज़ तो हमें मिलेगी नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, उस जन्नत में जाने के लिए मुसलमानों को भी, मोमिनों को भी उसी तरह से तगोदौ करनी होगी, जद्दोजहद करनी होगी, कोशिश करनी होगी, मेहनत होगी, तभी जाकर वो जन्नत मिलेगी जैसे कि सहाबे किराम ने कोशिश की थी। अगर ऐसी जद्दोजहद, मेहनत और कोशिश नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपने आप के लिए खुद गढ़ा खोद रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी, खुद अपने आप की भी, अपने अहलोयाल की और सबकी बेहतरीन तरबियत करने वाला बनाएँ, अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नुम की आग से बचाने वाला बनाएँ, और اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہوں جس سے ہم اپنی نوجوان نسل کو صحیح دینی تعلیم دے سکیں اور ان کو صحیح راہ پر لا سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.